हम देखते हैं कि इस्कॉन के भक्त जो हैं वो सड़कों पर कीर्तन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं और पुस्तकों का वितरण करते रहते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा समाज को? आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं?
तो ये आपका प्रश्न है?
तो ये मेरा प्रश्न है और साथ ही साथ जिन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उन लोगों का भी है।
समाज के लिए क्या करना है? तो ऐसे बहुत संस्थे धार्मिक या अधार्मिक संस्थे जो वो मानव कल्याण के लिए और गरीब लोगों को खिलाते हैं और वस्त्र दान देते हैं और हॉस्पिटल भी बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। तो ये आपका प्रश्न है। तो आप रास्ते में नाचते रहते हैं और कीर्तन करते हो, मानव समाज के लिए क्या कल्याण होते हमारे काम से? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। तो रास्ते में मत नाचो और स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, और यही धर्म है। कई लोग ऐसे बोलते हैं तो यही धर्म है। धर्म नहीं है तो भगवान का नाम लेना, धर्म है तो गरीब लोगों को खिलाना और ऐसे। तो हमारा क्या जवाब है? तो जवाब में पहले समझना चाहिए तो धर्म क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, और लोगों का वास्तविक कल्याण कैसे होते हैं। और नास्तिक जो है बोलते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते और सब कुछ जो है या खाली यहाँ पर इस जीवन में। तो इसलिए आज का सभी समस्याओं का समाधान आयोजन करना चाहिए। तो समझना चाहिए कि मृत्यु के साथ पूरा नाश नहीं होते। मृत्यु खाली शरीर का है और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति होते, अस्तित्व होते हैं। तो इसलिए वो आत्मा सनातन है, मृत्यु असनातन है। तो इसलिए परम कल्याण होते हैं आत्मा का, आत्मा कल्याण। और शरीर, हम शरीर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन थोड़े दिन में मृत्यु होगा और शरीर का नाश होगा। तो नास्तिक बोलते हैं कोई प्रमाण नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन होते हैं, लेकिन प्रमाण भी नहीं है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते जैसे नास्तिक बोलते हैं। तो और कुछ भौतिक विज्ञान का प्रमाण से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं है। तो अगर जीवन के बाद जीवन होते और अगर जीवन के बाद जीवन नहीं होते हैं तो कुछ भी वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक प्रयास से हम कुछ पता नहीं मिल सकता। तो ये विश्वास का प्रश्न है लेकिन अंधविश्वास नहीं है। वो सभी बड़े बड़े आचार्यगण कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की अस्तित्व होते हैं। और हम भी महसूस करते हैं कि मैं जीवित हूँ, मैं खाली शरीर नहीं हूँ। शरीर में क्या है? रसायन है, वो केमिकल्स से बनाए हैं, जड़ प्रकृति से। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अगर हम ऐसे समझते हैं कि आत्मा ही व्यक्ति है, शरीर नहीं है, तो आत्मा कल्याण है आध्यात्मिक, ऐसे समझना चाहिए। और शरीर के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, खाना पीना, सोना, रोटी कपड़ा मकान, यही सब बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन वो जीव का परम कल्याण नहीं है। तो जो बोलते हैं कि धर्म है गरीबों को खिलाना हॉस्पिटल बनाना, तो वो भी हम मानते हैं, लेकिन वो धर्म का वो उपधर्म है, वो परम धर्म नहीं है। वो एक धर्म, ये सब करना चाहिए, लेकिन ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म है यही समझना है कि हमारा सनातन कल्याण क्या है। और शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि जब तक हमारा ज्ञान नहीं होते कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सनातन दास हूँ, और जब तक हम ऐसे समझने से कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो वास्तविक कल्याण नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी को खिलाना है तो 5 घंटे के बाद वो फिर भूखी होगा। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि अगर वो भूखी लोग को खिलाना है, वो पैसा जो बचते हैं वो चावल दाल से इत्यादि खरीदने से, वो पैसा जो बचते हैं वो पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उससे कल्याण क्या होता है। तो जो भूखी है, हम जानते हैं वो कर्म फल के अनुसार भूखी होते हैं। अगर वो भूखी लोगों को खिलाना है तो शराब पीते, वही बात है कि ज़्यादा तो शराब पीते हैं। और दूसरी बात है कि कर्म फल के अनुसार, तो अगर इस बार फिर बढ़ते हैं तो दूसरे बार में वो भूखी रहेगा। तो कर्म फल तो ऐसे ही होते हैं। और ऐसे भी हॉस्पिटल बनाना है, तो लेकिन जितने भी हॉस्पिटल है और जितने अच्छा हॉस्पिटल होते हैं और उसमें जितने श्रेष्ठ डॉक्टर रहते हैं, तो लोगों का मृत्यु होते हैं। मृत्यु से बचाना का कोई उपाय नहीं है। तो अगर हम अच्छे हॉस्पिटल में मर जाते हैं या रास्ते में मर जाते हैं, तो फल एक ही होते हैं। तो वास्तविक हॉस्पिटल है जिसमें हम चिकित्सा मिलते हैं, जिससे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। यही हॉस्पिटल है इस्कॉन मंदिर। हम रास्ते में नाचते हैं जैसे कि लोगों प्रेरणा मिलेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली शरीर के लिए प्रयास करना, और आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना। हम नाचते हैं, वो किस प्रकार का नाचना, वो डिस्को डांस ऐसे नहीं है। तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। लेकिन नास्तिक लोग जिनकी बुद्धि बहुत नीचे, तो हमेशा धर्म और भगवान के विरुद्ध ऐसे बोलते थे, यही सब आध्यात्मिक प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो खाली हॉस्पिटल बनाओ। लेकिन हॉस्पिटल बनाने से क्या फायदा होते है? फायदा होते है कि गरीब लोग जो बीमार है उसका कुछ शारीरिक फायदा होगा, लेकिन आध्यात्मिक फायदा से वो कुछ नहीं है। हम हॉस्पिटल के विरोध नहीं है, तो अगर हॉस्पिटल, हम भी अगर ज़्यादा बीमार हो तो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हम ऐसे प्रचार नहीं करते कि वो मानव समाज के लिए श्रेष्ठ कल्याण है, क्योंकि वो नहीं है। दुर्लभ मानव श्रेय प्राप्त करके भगवान की सेवा करना चाहिए। तो खाली शरीर की सेवा करने से खाली शारीरिक फायदा होगा और पूरा फायदा नहीं होगा। एक बात और है कि अगर वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लेने से एक आदमी जो अज्ञानी है, जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं, तो अगर वो फिर स्वस्थ अच्छी बन जाते हैं ट्रीटमेंट लेने से, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, तो उसके बाद फिर वो शारीरिक बाल मिलके वो फिर वापस विषय सुख भोग विलास वापस जाएगा, और फिर ज्यादा पाप करेंगे तो अच्छा हो, अगर वो पापी लोग जो अच्छा हो, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो तुरंत मार जाना अच्छा है, जैसे कि ज्यादा पाप नहीं करेंगे इस जीवन में, लेकिन उससे और बहुत बहुत अच्छा है कि पाप बंद करेगा पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने से। तो ये इस्कॉन मंदिर ही हॉस्पिटल है, आध्यात्मिक हॉस्पिटल। हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रीटमेंट क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान देना। और हम भी बोगी लोग को प्रसाद खिलाते, खाली सब बोगी है, सब प्रसाद कृष्ण प्रसाद के लिए बोगी, हम सबको प्रसाद देते हैं। ऐसा भेद भेद नहीं कहते कि ये गरीब है वो धनी है, तो सब की आवश्यकता है कृष्ण प्रसाद लेना, क्योंकि कृष्ण प्रसाद लेने से तो खाली पेट भरने नहीं है। अगर हम सोचते हैं ये खाली पेट भरने के लिए है कृष्ण प्रसाद, वो एक अपराध है, क्योंकि कृष्ण प्रसाद लेने का मुख्य कारण है कृष्ण सेवा। ये कृष्ण भक्ति का एक अंग है या विभाग है। तो कृष्ण प्रसाद लेने से कृष्ण भक्ति भावना आते हैं, तो हम ऐसे कृष्ण प्रसाद वितरण करते हैं। हम भी लोगों को खाना देते हैं, खाना तो शब्द तो ठीक नहीं है, क्योंकि यही कृष्ण प्रसाद है, तो हम कृष्ण प्रसाद देने, लेकिन वो साधारण खाना नहीं है, वो आत्मा के लिए खाना है। तो ये फर्क है।
तो ये खाना किस प्रकार आत्मा के लिए खाना है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जो चीज आप दे रहे हैं वही चीज अन्य को ये दे रहा है, पर आप उसे बोल रहे हैं कि ये तो आध्यात्मिक है।
कृष्ण प्रसाद तो साधारण खाना नहीं है। कृष्ण प्रसाद क्या है, तो भगवान कृष्ण को चावल दाल रोटी चटनी खीर ये सब अर्पण करना है, और अर्पण करने के पहले और के पश्चात तो ऐसे एक ही देखते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि यही प्रसाद है। अगर प्रेम से भगवान को अर्पण करना है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्ति उपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर मेरे भक्त भक्ति के साथ मुझको फल फल जल इत्यादि पत्र अर्पण करते हैं, मैं वो प्रेममय अर्पण ग्रहण करता हूँ, और यही प्रसाद। प्रसाद ये शब्द का मतलब कृपा, भगवान की कृपा से वो खाना हमको वापस देते हैं, और वो प्रसाद सेवा करने से, हम प्रसाद खाते हैं ऐसे नहीं बोलते, अगर हम खाते हैं वो इसका मतलब हम भोग करते हैं, तो इसे हम प्रसाद नहीं खाते लेकिन हम प्रसाद सेवन करते हैं। कि प्रसाद लेना वो कृष्ण सेवा का एक अंग है, और वो कृष्ण प्रसाद लेने से सेवा करने से वो चित्त शुद्धि होते हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं है प्रसाद में और चित्त शुद्धि में, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन भक्तों के जीवन में अनुभूति होते हैं कि कैसे कृष्ण प्रसाद सेवा करने से जीवन में परिवर्तन है, चित्त शुद्धि होते हैं। और हम ऐसे बहुत बार देखते हैं कि लोग जो पूरा नास्तिक होते कृष्ण प्रसाद लेने से परिवर्तित हो जाते हैं। एक बात है कि बहुत से लोग जो कृष्ण प्रसाद में विश्वास नहीं है और कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है, तो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो वो क्या है, हम नहीं लेंगे, वो क्या है, वो मंदिर का खाना हम नहीं लेंगे। एक्चुअली क्या होते है? वो डर लगते है कि अगर हम लेंगे तो चित्त शुद्धि होगी, हमारा आकर्षण होगा कृष्ण भक्ति के लिए। ऐसे विपरीत रूप में ऐसे लोगों की श्रद्धा होती है भक्ति में, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम लेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे, तो ऐसे विश्वास है कि कृष्ण प्रसाद में प्रभाव है, लेकिन उसलिए नहीं लेते। भक्तजन कृष्ण प्रसाद लेते हैं क्योंकि विश्वास है इसमें प्रभाव है कि हम कृष्ण भक्ति मिलेंगे, और नास्तिक लोग भी ऐसे विश्वास है लेकिन उससे नहीं लेते। अगर सोचते कि वो कृष्ण प्रसाद तो साधारण खाना है, तो भक्तजन तो भगवान को आपन करते हैं और वो उसमें कुछ नहीं है, वो खाली कल्पना है, तो क्यों प्रसाद नहीं लेते? अगर सोचते वो साधारण खाना है तो उसमें अच्छा स्वाद भी होते और हम फ्री देते, तो क्योंकि नहीं लेते, क्योंकि विश्वास है कि इसमें प्रभाव है और इसलिए नहीं लेते। लेकिन उससे हम समझ सकते हैं कि वे भी विश्वास करते हैं कि ये साधारण खाना नहीं है। करीब वो सोचते इसमें वो कुछ जादूकारी है ऐसा। लेकिन वो जादू क्या है? वो कृष्ण भक्ति प्रभाव है प्रसाद में।
कृष्ण का एक नाम माधव भी है।
हाँ,
और हमने कई जगह सुना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है।
हाँ,
तो ये जो धारणा है ये
हम सुनते हैं, लेकिन कितने सही है? कितने मानव सेवा माधव सेवा है, तो वो एक बोल है, वो शास्त्र का वचन नहीं है।
ये शास्त्रों में नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, ऐसे एक आधुनिक कहावत है। तो अगर मानव सेवा माधव सेवा है, क्यों शास्त्र में माधव सेवा विधि है जो मानव सेवा विधि से अलग है? माधव सेवा कैसे करना है? कस पूजा करने से मानव के लिए पूजा करने के की कोई विधि नहीं है, तो अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि माधव और मानव अलग है। अगर मानव सेवा माधव ऐसे बोलना है, इसमें उदाहरण है कि मानव और माधव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। माधव है भगवान, माधव माँ का मतलब लक्ष्मी और धव का मतलब स्वामी पति। तो जीव लक्ष्मी देवी की पति नहीं है, जीव भगवान नारायण और लक्ष्मी के सेवक है। लेकिन क्योंकि हम स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि हम बदमाश है, इसलिए हम बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा है। तो इसमें ये भूल धारणा है कि मानव और माधव एक ही है, लेकिन ये वास्तव में वो अपराध है ऐसे बोलना। तो इसलिए लोग जो इसमें विश्वास है कि मानव सेवा माधव सेवा एक ही है, तो गरीबों को खिलाने और हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, तो ये सब कहते हैं और बोलते हैं कि ये भगवान की सेवा है क्योंकि मानव भगवान है। ये सब अपराध है। अगर हम कहते हैं कि भगवान और सामान्य जीव एक ही है, तो वो अपराध है। एक उदाहरण बोलता हूँ, तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अगर हम कहते हैं ये प्रधानमंत्री है, ये रिक्शा ड्राइवर के समान है, तो वो अपमान होते। क्यों? एक परिप्रेक्ष्य में रिक्शा ड्राइवर के समान है, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय नागरिक है, लेकिन प्रधानमंत्री की पद रिक्शा ड्राइवर से बहुत ऊपर है। तो अगर हम कहते हैं कि ओए वो प्रधानमंत्री रिक्शा वाला है, तो क्या अपराध नहीं होगा? अपराध होते। तो भगवान एक परिप्रेक्ष्य में एक जीव के समान है, क्योंकि भगवान भी आत्मा है, हम आत्मा है और भगवान आत्मा है, लेकिन भगवान परमात्मा है। और अगर हम बोलते कि सभी विचार में भगवान और मानव या साधारण आत्मा एक ही है, तो वो अपराध है।
क्या भगवान के अंदर भी आत्मा होती है? आपने अभी बोला भगवान परमात्मा है, तो
भगवान परमात्मा है। भगवान जो परमात्मा है, सभी आत्मा के साथ रहते हैं, लेकिन परमात्मा का शब्द है, इसका मतलब है वे ही परम है। अगर भगवान परम नहीं थे, तो वो परमात्मा शब्द का आवश्यकता नहीं था। शास्त्र में आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा तीन शब्द हैं। अगर एक परमात्मा नहीं थे तो परमात्मा शब्द का जरूरत नहीं था। तो परमात्मा का मतलब एक, क्योंकि परम का मतलब एक, जिनके ऊपर नहीं है, जिनके समान नहीं है। तो आत्मा शब्द है और परमात्मा शब्द है, ये दो शब्द भिन्न है क्योंकि अंतर है। तो परमात्मा है और जीवात्मा है, जीवात्मा सदैव परमात्मा से अधीन होते हैं, यही निरंतर है। तो यही समझना चाहिए। अगर हम कहते हैं मानव और मादव एक ही है, आत्मा और परमात्मा है, तो अपराध होते हैं। और इस अपराध से हम भगवान की भक्ति कभी भी नहीं मिलेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे।
परमात्मा और भगवान में भी कोई अंतर है?
परमात्मा ये शब्द का मतलब भगवान है। तो सूक्ष्म विचार में परमात्मा है भगवान का एक रूप है, जो भौतिक जगत में सबके सब जीवात्मा के साथ रहते हैं, और विष्णु रूप है। देखिए साधारण विचार में परमात्मा और भगवान तो एक ही शब्द है और एक ही मतलब है, लेकिन सूक्ष्म विचार में परमात्मा है भगवान का एक विशेष रूप है, जो विशेषकर इस भौतिक जगत में सबको पालन करते हैं और सब जीव के हृदय में विराजमान होते हैं, सब प्राणी के हृदय में आत्मा के साथ, जीव आत्मा के साथ रहते हैं।
ये जो
बहुत कुछ सीखना है वैष्णव धर्म, वैष्णव शास्त्र में बहुत कुछ सीखना है।
ये जो परमात्मा है सबके हृदय में है, तो कुछ लोग तो गलत कार्य भी करते हैं, तो उन गलत कार्यों को करने की अनुमति क्यों दी जाती है उन्हें? अगर ये भगवान सबके हृदय में है, तो वो एक गलत कार्य किस प्रकार से कर पाते हैं? क्योंकि आपने बोला कि जो परमात्मा है वो उनकी अनुमति के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता, तो गलत कार्य
नहीं। भगवान हमको, जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष सुख दूत कानम भोक्तृद्वय हेतु रुच्यते। भगवान हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, और भगवान की इच्छा है कि हम इनके सेवा में रहेंगे। लेकिन अगर हम विप्लवी है, अगर हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं, भगवान हमको अवसर देते हैं इस भौतिक जगत में नकल भगवान होना, ईश्वर हम भोगी। और आसुरिक लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ। तो भगवान हमको अवसर देते हैं, थोड़े से स्वाधीनता देते हैं। तो भगवान की इच्छा नहीं है कि हम इनसे अलग रहेंगे। लेकिन अगर हमारी दूषित इच्छा ऐसे होते हैं, तो भगवान हमको अवसर देते हैं, पूरा अनुमति नहीं देते, लेकिन हमको अवसर देते हैं। और हमको प्रचार कहते थे, हे बद्ध जीव, ऐसे मत करो, मेरे पास वापस आओ, मेरी सेवा करो, फिर तुम सुख शांति प्राप्त करोगे। तो भगवान अनुमति नहीं देते, लेकिन हमको अवसर देते, ऐसा होता है।
परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान सबके परम हितैषी हैं,
और तो इसलिए भगवान हमको भगवद गीता देते हैं और बोलते हैं तो ऐसे मत करो। लेकिन अगर हम जोर से इंसिस्ट करते हैं कि मैं भगवद गीता का वचन पालन नहीं करूँगा, मैं भगवान से अलग हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, तो भगवान हमको अवसर देते हैं।
नहीं, पर ये अवसर दिया ही क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर भगवान
क्योंकि भगवान की इच्छा है कि हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन वो सेवा तो वॉलंटरी स्वेच्छा होना चाहिए। अगर जबरदस्त से भगवान हम इनकी सेवा लगाते, हम अगर मशीन जैसे या खाली डर से भगवान की सेवा करते, तो वो प्रेम नहीं होगा। इससे भगवान हमको थोड़ी सी स्वाधीनता देते हैं, स्वाधीनता देते हैं और अगर हम स्वीकार नहीं करते भगवान की सेवा करना, तो भगवान हमको इस भौतिक जगत देते। तो ये भौतिक जगत क्या है? वो जगत जिसमें वो सब बद्ध जीव जो कृष्ण सेवा से अलग रहना चाहते हैं, इसमें इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो आपके बहुत सारे प्रश्न है, तो अभी काफ़ी समय नहीं है, तो कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।